The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। डॉक्टर आदमी नहीं देवता है, देवता तंत्रिमा टोली, पोलिया टोली, कुर्म छत्री टोली और रैदास टोली में सब मिलाकर सिर्फ 5 आदमी नुकसान हुए। घर घर में एक दो आदमी बीमार थे, लेकिन डॉक्टर देवता है, दिन रात कभी एक पल चैन से नहीं बैठा। मास्टरनी जी भी देवी हैं, कालीचरण भी बहादुर है। कै और दस्त से भरे बिछावन पर लेटे हुए रोगी की सेवा करना, कपड़े धोना, दवा डालकर गंदगी जलाना आदमी का काम नहीं, देवता ही कर सकते हैं। एक पैसा भी फीस नहीं लिया और मुफ्त में रात रात भर जग कर लोगों का इलाज करते रहे। रेशमलाल कोयरी के इकलौते बेटे को जम के मुंह से छुड़ा लिया। रेशम ने डॉक्टर को खुशी खुशी एक गाय बख्शीश दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, अपने लड़के को इस गाय का दूध पिलाओ, दूध बिक्री मत करो, यही हमारी बख्शीश है। बावन दास भी अवतारी आदमी है, रात भर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खंजरी बजाकर गाते रहते थे, मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, सीताराम सीताराम वंदे महातरम मालिक सीताराम। भयावनी रात में जबकि आदमी अपनी छाया से डरते थे, बावन का गीत डरे हुए लोगों को बल देता था। मालिक सीताराम सोच मन काह करो, निर्बल के बल राम। ब्राह्मण टोली में 3 आदमी मरे और ज्योतके जी की स्त्री तो दूसरी बीमारी से मरी, बच्चा अटक गया। कायस्थ टोली, संथाल टोली और यादव टोली में 1 भी आदमी बीमार नहीं हुआ। राजपूत टोली में 5-7 आदमी को रोग ने पकड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबों को बचा लिया। 15 दिनों के बाद कमली ने डॉक्टर की सूरत देखी है। कमली ने मन ही मन कितनी बातें घड़ रखी थी, वो रूठी रहेगी, बोलेगी नहीं, 15 दिनों में एक बार भी तो आते, रहने दीजिए, यही होता ना कि रोग का छूत मुझे लग जाता, मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी जो थी रात भर खूब चाय बनाकर पिलाती थी ना, लेकिन डॉक्टर को देखते ही वो सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया है, आंखें धस गई हैं। प्यारो ठीक ही कहता था, डॉक्टर साहब दुनिया भर को आराम कर रहे हैं लेकिन खुद बीमार होते जा रहे हैं, खाना पीना तो एकदम कम हो गया है। कमली चाहती है कि माँ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को अकेला छोड़ दे, आज वो डॉक्टर से लिपट जाएगी। कहिए हैजा डॉक्टर साहब, कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास जाती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात जरा, मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो, माँ डांटते हुए कहती है। बारे रामपुर के बटैयादार लोग उस दिन आकर बाबूजी से पूछ रहे थे कि हैजा डॉक्टर कहाँ रहता है, सुना था नहीं, लोग इन्हें हैजा डॉक्टर ही कहते हैं। कमला खिलखिलाकर हंसती है, माँ हंसते हुए चली जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं लेकिन तुमको तो कहना चाहिए बेहोशी डॉक्टर। आहा, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली है और बात बनाते हैं। कमली मुंह फुलाती है, नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगा रहता था तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा। तो मैं जानबूझकर बेहोश होती हूँ क्यों? हाँ जानबूझकर, क्यों? क्योंकि बेहोश होने से ही बेहोशी डॉक्टर आता है।
डॉक्टर आवे ना आवे मेरी बला से।
अच्छी बात है, तो मैं चला। डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी, सो तो नहीं बैठ कर झगड़ा कर रही है, माँ अंदर से ही कहती है। कमली दांत से जीभ को दबाते हुए उठ भागती है, माँ सब सुन रही थी शायद। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गांवों का परिचय प्राप्त किया, भयातुर इंसानों को देखा है, बीमार और निराश लोगों की आंखों में भाषा को समझने की चेष्टा की है, उसे मध्यवित किसानों के अंदर हवेली और बेजमीन मजदूरों की झोपड़ियों में आने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। रोगियों को देखकर उठते समय छींके पर टंगी हुई खाली मिट्टी की हंडियों से उसका सिर टकराया है। 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पलते देखा है। उसने देखा है गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, बड़े मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुमला जाते हैं। शाम होने से पहले ही पपड़ियां झड़ जाती हैं। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फर्क है। और कमली तो राजकमल, मैं तुम्हें राजकमल कहूंगा और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर कहूंगी। कमला ने आज अनजाने ही तुम कह दिया। प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता, मैं कमला नदी का गड्ढा ही होना पसंद करूंगा। डॉक्टर हंसता है। कमले की बड़ी बड़ी आंखों की पलकें एक बार ऊपर उठकर झुक गईं। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश, सियार और नेवले। माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? क्यों नहीं, तो आज ही चलो अभी। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही है। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा के उगते हुए चांद का सा मालूम हो रहा है। दिन भर धू धू कर चलने वाली पछी हवा गिर गई है। गांव के पनघट पर स्त्रियों की भीड़ आंखें फाड़ कर इन दोनों को देखती हैं। झगड़े बंद हो जाते हैं, पानी भरना रुक जाता है। नजर से ओझल होने के बाद फिर सबों के मुंह से अपनी अपनी राय निकलती है। कमली अब आराम हो गई, डॉक्टर साहब ने इसको बचा लिया, दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी है। सतल रहना बायोस्कोप का एक किताब लाया है, उसमें ऐसी ही एक जोड़ी की छापी है, ठीक ऐसी ही। डॉक्टर भी कायस्थ है क्या, कौन जात है? क्या जाने बाबा, इलाज करते करते कहीं क्या बकती है। सिर की गर्मी शाम को मैदान की हवा में ठंडी होती है, जानती नहीं। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के छूट पर चले गए। आंचल पसार कर मन ही मन बोली, दुहाई कमला मैया, गणेश पास ही गुल्ली खेल रहा था। वो जोर से चिल्लाया,
पूलब से चाहे बाया पश्चिम छे मेम, चाहे बोले गिटिल पिटिल खिलखिल हंसे मेम।
कमला और डॉक्टर ने उलटकर देखा, गणेश ताली बजाकर हंस रहा था।
देखो नानी, चाहेब मेम।
दोनों ने हंसते हुए मौसी को प्रणाम किया। गणेश भागकर मामी के आंचल में छिप जाता है। कमले चिल्लाकर कहती है,
अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूँ तो कान पकड़कर चांद दिखाऊंगी।
तहसीलदार साहब रास्ते में ही मिले, हंसते हुए बोले,
आज शायद यही पागलपन सवार हुआ था, अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है।
सभी एक ही साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर की बड़ी बड़ी डालियां लाल लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के झोंकों में हिलडुल रही थी। अमलतास के पीले फूल नववधू की पीली ओढ़नी की याद दिला रहे थे। योजन गंधा शाम की हवा में पागलपन बिखेर रही थी। सरीश के फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी। मार्टिन ने बड़े जतन से फूल लगाए थे, बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी। बाहों में पड़ी हुई मेरी के लाल होठों की ताजगी को और भी प्राणमय बनाने के लिए पानी पटाने वाले मालियों पर वो कड़कते हुए बोला होगा,
देखो एक भी गाछ सूखने पर 50 पेंटेगा।
चैत की गोधूली में अपनी सारी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना मुंह छिपा लिया था। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियां कुछ मटमैली, कुछ सिंदूरी सी पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करके सूरज को अतल गहराई में डूबते हुए देख रही थी। गाय और बैलों के साथ घर लौटते हुए चरवाहे सावित्री नाच का गीत गा रहे थे। आहे सखी चलो फुलवारी देखे है, देखो वो सुंदर रूप, नाना रसना फूल अनूप, चलो फुलवारी देखे है। गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर पड़ी, किंतु योजनगंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं, आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और फिर झुक गई।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।